नमाज नबी का अगला चैप्टर, जिससे हम आज इंशाल्लाह कुछ अमल की बातें जो हमने इससे सीखी उसको देखेंगे, वो है नमाज की सुन्नतों का बयान। सुन्नत नमाजों का क्या हुक्म है और नमाज में सुन्नतों की क्या जगह है, इस बारे में भी कुछ इफरात और तफरीत जो है वो हमारे पाया जाता है। पहली चीज़ जो हमने इस हिस्से से सीखी कि फ़र्ज़ नमाजों के अलावा 12 रकतें जिसने पढ़ी उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाता है। कौन सी हैं वो रकतें? जोहर की नमाज से पहले 4 रकतें, 2 रकतें फ़र्ज़ों के बाद, 2 रकत मगरिब के बाद, 2 रकत ईशा के बाद और 2 रकत नमाज़े फजर से पहले। हमारे यहाँ नमाज के अंदर काफ़ी शिद्दत बरती जाती है। इनके साथ कुछ और भी चीज़ों को मिला के फ़र्ज़ के दर्जे पे पेश कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर पढ़नी है तो पूरी पढ़ो। और बास लोग सिर्फ इसलिए ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ते कि वो 17 रकत है। तो ये हुक्म अब हमें समझ आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते हुए, फ़र्ज़ फ़र्ज़ है, सुन्नत सुन्नत। एक वो चीज़ है जिसके ना करने से दीन पे नुकसान आता है, दीन के अंदर हलल आता है। दूसरी वो चीज़ है कि जिस पे अमल अगर नहीं करते किसी वजह से, हाँ दिल में ये ख्याल है कि करना चाहिए, इनकार नहीं ना शुक्री नहीं, तो ना करने की सूरत में इंसान गुनाहगार नहीं होता। और दूसरी बात इसमें हमें पता चलती है कि ये 12 रकते ही सुन्नतें हैं, इससे अलावा कुछ और सुन्नतें भी लोग सुन्नत के नाम पे पढ़ते हैं तो वो चीज़ इसके दर्जे पे नहीं आएगी। दूसरी बात हमने इस हिस्से में से सीखी कि जोहर से पहले 4 की बजाय 2 रकतें भी पढ़ी जा सकती। अमूमन हमारे यहाँ 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर कभी किसी मौके पे मजबूरी हो, नहीं पढ़ना चाहते या नहीं पढ़ सकते, तो सिर्फ आप 2 सुन्नतें भी अदा कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ हमने एक और हदीस से जो सीखी वो क्या थी कि 4 रकत सुन्नत को भी 2-2 करके अदा किया जा सकता है। देखिए कितनी ऑप्शंस मिल रही हैं आपको नमाज के अंदर जो हम अमूमन नहीं जानते। अगली चीज़ हमने सीखी कि नफिल या सुन्नतें घर में पढ़नी चाहिए और फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ने चाहिए, और यही अल्लाह के नबी का अमल था। एक और चीज़ जो हमने सीखी, गैर मौकेदा सुन्नतें यानी जिनकी ताकीद नहीं है, कोई कर ले तो ठीक है अच्छी बात है, वो हैं असर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें। इससे तो काफ़ी लोग वाकिफ़ होते हैं, लेकिन एक सुन्नत जिसका जिक्र करने वाली हूँ वो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग उससे आगाह नहीं होते, और वो है मगरिब की नमाज से पहले की 2 सुन्नतें। हमारे कल्चर में इसका रिवाज नहीं, इसलिए मैं यह हदीस पढ़ के सुनाना चाहूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा फरमाया, मगरिब से पहले 2 रकतें अदा करो। तीसरी बार फरमाया, जिसका दिल चाहे। ये इसलिए फरमाया कि कहीं लोग इसे सुन्नते मुअक्किदा ना बना लें। हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना में मुअज्ज़िन मगरिब की अज़ान कहता, हम सब सुतूनों की तरफ दौड़ते। क्यों? सुतून के पीछे पड़े ताकि वो सुतरा बन जाए, सुतरा बनाने के लिए। और 2 रकतें पढ़ते, लोग इस कसरत से 2 रकतें पढ़ते कि अजनबी ये गुमान करता कि मगरिब की जमात हो चुकी, यानी बाद में कोई दाखिल होता तो वो लोगों को इस तरह पढ़ते देख के समझता कि फ़र्ज़ अब हो गए और फ़र्ज़ों के बाद की 2 सुन्नतें ये लोग पढ़ रहे हैं। इसी तरह इस मौजू पे एक तीसरी बात क्या है, मरसद बिन अब्दुल्ला अकबा रदी अल्लाह अन्हों के पास और कहा, क्या ये अजीब बात नहीं कि अबू तमीम रदी अल्लाह अन्हों मगरिब की नमाज से पहले 2 रकत पढ़ते हैं? अकबा ने कहा कि हम भी रसूलुल्लाह के ज़माने में पढ़ते थे। इसने पूछा, आप क्यों नहीं पढ़ते? कहने लगे कि मसरूफियत हो गई है। ये रिवायत देखिए, इसका नीचे हवाला सही बुखारी की रिवायत है और तहज्जुद के बाब में आई है। ऊपर जो पहले 2 रिवायतें बताई, एक बुखारी ही की थी एक मुस्लिम की, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनद की रिवायतें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर में किसी को नहीं पता। आप में से किस को पहले ये बात पता थी? एक को भी नहीं पता थी, तो फिर फ़ायदा हुआ ना किताब पढ़ने का। तब देखिए इतनी छोटी, बल्कि यहाँ तो ये बहुत ही आला दर्जे की सनद की रिवायतें होती है ना, इसके बारे में ये भी आता है कि इसका अजर अगर इंसान को पता चल जाए तो वो कभी ना छोड़े। और अब आइए ज़रा इसको रमज़ान के नाते से देखें, हमारा ये वक्त कहाँ जाता है इफ्तारी खाने में। और ये सुन्नत वही पूरी कर सकता है जो खजूर के बाद बस पानी का एक घूंट लेके खड़ा हो जाए, क्योंकि मगरिब से पहले वक्त इतना थोड़ा होता है, फ़ौरन उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं। मगरिब वो नमाज है कि जिससे पहले अमूमन अजान के बाद के जो 15 मिनट है वो भी नहीं दिए जाते, तो उस वक्त में, और इसको बहुत हल्का पढ़ेंगे, और ख़ैर से हम तो वैसे ही हल्का पढ़ते हैं, इसको बहुत लंबा नहीं पढ़ें कि फ़र्ज़ जमात चली जाए, ठीक है। अगली चीज़ जुमे के बारे में, इसमें भी बहुत अहम मसले आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और सारी चीज़ें सुनते वक्त हमें अमल की नीयत से भी देखना है। पहली बात ये है, जुमे की सुन्नतें हैं बेसिकली ये कि अगर कोई चाहे तो जुमे की नमाज के बाद 4 रकत अदा करे, और कोई चाहे तो 2 रकत भी पढ़ ले। अल्लाह के नबी जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में कुछ ना पढ़ते, फिर घर आते और 2 रकतें पढ़ते। मस्जिद में 4 सुन्नतें दो दो करके पढ़े, घर में आए तो फिर 2 सुन्नतें पढ़े। अब ये सारी रिवायतों का खुलासा है। मस्जिद में 2 फ़र्ज़ पढ़े हमने इमाम साहब के साथ जुमे की नमाज के तौर पे, उसके बाद मस्जिद में ही पढ़ना चाहें 2 रकत 2 रकत करके 4 पढ़ लें, सिर्फ 2 पढ़ लें ठीक है, नहीं पढ़ते घर जाके 2 भी पढ़ लें, कोई कुछ नहीं पढ़ता, जुमे पे कोई फ़र्क नहीं। जुमे की नमाज 2 रकत है जस्ट। अब जुमा पढ़ लिया, अब जोहर से उसको नहीं मिला सकते, घर में पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो 2 पढ़ेंगे। ये है बाद वाली सुन्नतें। मैं बात करूंगी पहले वाली सुन्नतों की। एक गलती जो हमारे यहाँ अमूमन देखी गई और वो जुमे के साथ होती है कि लोग जुमे की नमाज के लिए जब आते हैं मस्जिद में तो उसमें आते ही पहले नमाज शुरू करते हैं, बल्कि जुमे का बाब आगे आ रहा है तो उसी में इंशाल्लाह फिर हम इसको देखेंगे। हालांकि ये सुन्नतों ही का बाब है कि बस लोग बहुत ही इज्तमाई किस्म की गलती जो है वो करते हैं कि जुमे की नमाज A to Z क्या है, कब जाएं तो क्या करें और जाने के बाद से तक क्या चीज़ें होंगी, सिर्फ सुन्नतों पे भी फोकस करते हैं। अगली चीज़ हमने सीखी कि फजर की 2 सुन्नतों की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के नबी को वो दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी थी, और अल्लाह के नबी ये 2 सुन्नतें सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। फिर अगली बात है कि फजर की 2 सुन्नतों के बाद दाएं पहलू पे लेट जाना चाहिए। अल्लाह के नबी लेटते थे और एक दुआ है अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा से लेके आगे तक मारूफ दुआ है, वो आप पढ़ते थे। तरीका क्या होगा, 2 सुन्नत पढ़े फिर जाए नमाज पे इस तरह लेटें कि आपकी लेफ्ट साइड ऊपर हो और राइट साइड नीचे हो। चंद मिनट, 1-2 मिनट एक सस्ताने का अंदाज है। असल में तो ये एक रुख्सत भी थी उन लोगों के लिए जो तहज्जुद के लिए पहले से जागे होते हैं, लंबे लंबे क्याम कर चुके हैं, तो उनको फजर की फ़र्ज़ों के लिए तैयार किया जाता है ठीक है। फिर इसके बाद अगली बात हमने सीखी कि अगर किसी वजह से फजर की सुन्नतें अदा ना कर सके और मस्जिद में जाए और जमात हो रही हो तो फिर सुन्नतें जो हैं वो बाद में भी अदा की जा सकती हैं। यानी आप उठे, फजर का वक्त था, अब शुरू हो चुका था, अब इतना वक्त नहीं था कि आप सुन्नतें पढ़ें, और सुन्नतें पढ़ने में सूरज के निकलने का डर हो सकता है, तो फिर आप सुन्नतें बाद में भी पढ़ सकते हैं। इवन सूरज निकल जाए फिर उसके बाद दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको बाहर हाल पढ़ना चाहिए। अगली बात कि फ़र्ज़ नमाज शुरू हो जाए तो सुन्नतें अदा नहीं करेंगे, और अगर कोई सुन्नतें अदा कर रहा है और इमाम साहब तकबीर कह दें, जूँ ही तकबीर ख़त्म हुई अल्लाह अकबर से तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू हुई, तो फिर पिछले शख्स के लिए सुन्नतें पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं रहता। उस सूरत में जिस पोजीशन में सलाम फेर दें, रुकू के बाद, रुकू से पहले, सजदे में, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देने वाला। अगर नफिल पढ़ रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं दोबारा दोहराने की, पढ़ना चाहे पढ़ें, सुन्नतें थी तो उसको बाद में 2 सुन्नतों को आप फिर दोबारा पढ़ लें। अगली चीज़ कि नमाज़ों की कुल रकात क्या हैं, जो यानी मतलूब है फजर की नमाज 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़, जोहर 4 सुन्नतें 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें, असर 4 फ़र्ज़, मगरिब 3 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें, ईशा 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें, इसके बाद एक वितर या 3 पढ़ लें। ये है वो नमाज जो मतलूब है। इसके अलावा जो भी रकतें नमाजों में है वो नफलों की सूरत में थी, जिसको फिर लोग बाज़ दफ़ा मतलब नमाज का एक लाजमी हिस्सा समझ के अदा करते हैं और बाज़ उसकी वजह से नमाज अदा नहीं कर पाते। इसमें भी जो फ़र्ज़ है ना वो सबसे पहले दर्जे पे है, सुन्नतें उससे बाद, और नफिल तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी पढ़ें, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो नमाज फ़ौरन पढ़े। अगली बात हमने इसमें सीखी कि वितर चाहे तो नमाज ईशा के साथ ही पढ़ ले, और चाहे तो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ने के बाद पढ़ ले। अगला चैप्टर देखते हैं, तहज्जुद, क्यामुल लैल, क्याम रमज़ान और वितर के मसाइल। इस बाब से हमने सीखा कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे कीमती नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है। अगली बात हमने सीखी कि तहज्जुद अल्लाह से कुर्ब, गुनाहों के मिटने और मजीद गुनाहों से बचने का सबब है। अगली बात हमने सीखी कि शौहर अगर तहज्जुद के लिए उठे तो बीवी को उठाए, बीवी उठे तो शौहर को उठाए, और अगर कोई ना उठे तो पानी के छींटे मारे। पहले से इजाज़त ले लें और अपना ताल्लुक अच्छा रखें, ये ना कि उस वक्त सुबह ही लड़ाई शुरू हो जाए। और आप देखिए इससे कितना प्यारा घराना बनता है ना, मिसाली घराना तसव्वुर में आता है। तो मुझे उठाओ मैं तुम्हें उठाती हूँ, एक ये घराना है और एक वो घराने के जहाँ आप किसी को गुनाह के लिए मजबूर करते हैं, तो फिर दोनों घरों में बरकतें तो एक जैसी नहीं होंगी ना। अगली चीज़ हमने सीखी कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसके सर की गुद्दी पर 3 ग्रहें लगाता है और कहता है कि रात बड़ी लंबी है, यानी सोते रहो अभी बहुत वक्त है। जब भी इंसान तहज्जुद के लिए उठना चाहता है तो शैतान उसको तसल्ली देता है कि अभी तो बहुत वक्त है, देखो अगर अभी उठ गए फिर फजर तक पता नहीं फिर ही ना सो जाओ, और इसी तरह रात गुजरती है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करे एक गिरा खुल जाती है, वुजू करे तो दूसरी खुल गई, नमाज़ पढ़े तो तीसरी खुल गई, और सारा दिन इंसान का दिल खुश रहता है, उसका नफ्स पाक रहता है, और अदरवाइज़ उसका दिल बोझल रहता है, तबीयत सुस्त है, और उसकी सुबह यानी गंदगी वाली सुबह होती है। और इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो फजर की नमाज़ वक्त पे नहीं पढ़ पाते उनके साथ फिर ऐसे ही होता है, असल में वो हम शैतान के पंजे पे होते हैं। अगली बात हमने सीखी कि हर रात अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर नजूल फरमाते हैं जब तिहाई रात रह जाती है, और पुकारते हैं कि है कोई जो मुझे पुकारे मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं इसको दूँ, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको बख्श दूँ। उस वक़्त इन सारी ज़रूरतों के तालिब जो हैं वो कहाँ होते हैं, हर एक जानता है, उसी वक्त तो आँख लगती है। हैरत है ना, जिस वक्त शैतान नासिल होते हैं मगरिब से इशा के और इसके वक्त में, उस वक्त तो हम पूरे एक्सपोजर के साथ बाहर फिर रहे होते हैं, अपने आप को सजाते और संवारते, और जिस वक्त अल्लाह की रहमतों और नवाजशों का नजूल होना होता है तो उस वक्त हम चादरें तान के सो जाते हैं। फिर हमें खैर कहाँ से मिले, अल्लाह ताला हमारे मामूलात को बदल दे। अगली बात हमने सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लम इतनी कसरत से यानी इतने लंबे क्याम करते थे कि आपके पाँव सूज जाते थे, और आप ये सब अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए करते थे। अगली बात हमने सीखी और बाकी सीखने की बात है कि रात को जब बिस्तर से कोई तहज्जुद के लिए उठे तो क्या पढ़े, 10 बार अल्लाह अकबर, 10 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 10 बार सुबहानअल्लाही व बिहम्दिही, 10 बार सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, 10 बार अस्तग़फिरुल्लाह, 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर अल्लाहुम्मा, आप भी पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा आऊज़ु बिका मिन दीक़िद दुनिया व दीक़ि यौमल क़ियामा। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ दुनिया और क़यामत के दिन की तंगियों से, 10 बार ये दुआ पड़ेगा। फिर क्या कहे, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वहदिनी वरज़ुक़नी व आफ़ीनी। फिर इसके बाद वजू करके तहज्जुद पढ़ी जाएगी। आप में से कितनों को ये बता थे ये वाले अज़कार, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आप लोग तो उन लोगों में से हैं मेरे गुमान के मुताबिक के जो दरस वाज़ और तदरीस और इल्म की महफ़लों से वाबस्ता हैं, तो फिर दूसरे लोगों का हाल क्या होगा। इसी से हम देख सकते हैं कि इल्म का सफ़र इंसान के लिए मार्फत का सफ़र है। और ये कितने छोटे कलेमात हैं कि एक बीमारी होती है कि जिसमें लोग लेट के फ़ौरन जब उठ जाते हैं ना तो फ़ौरन गिर जाते हैं, और वजह क्या कि आपका ब्लड बिल्कुल यूं था ना, बॉडी पूरी में यूं, और आप एकदम खड़े होंगे ना तो वो जिस्म के अंदर एकदम इंतशार आता है, पहले लेटे थे ना अब थोड़ी देर बैठे। अब ये सारी दुआएं पढ़ने में 10-15 मिनट तो लगेंगे ना, तो उतने में जिस्म सुकून में आ जाएगा, फिर आप उठेंगे। अगली चीज़ हमने सीखी और ये वाकई आप याद भी करेंगे इस हिस्से में, क्योंकि ये दुआ इंसान की उन दुआओं को कबूल करवाती है जो दिन की घड़ियों में अगर वो ना मांग सके या उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआ क्या है मैं पूरी रिवायत आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स रात को नींद से जागे और कहे, आप भी कहिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु وَلَهُ الْحَمْدُ
وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ
وَهُوَ
عَلَى كُلِّ
عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ
شَيْءٍ
قَدِيرٌ.
قَدِيرٌ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ
وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ
وَلَا قُوَّةَ
إِلَّا بِاللَّهِ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. پھر کہے اللہم اغفر لی، پڑھی اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. کتنا آسان ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا. اور اس میں اب دیکھیے آپ نے مانگا کیا ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے، شکر، حمد، تسبیح، تکبیر. کتنا اللہ تعالیٰ کو پیار آتا ہوگا نا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اور یہ کروٹ بدلنے کی بھی دعا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے انسان کو نیند نہیں آتی، یا نیند آئی اور ایک دم آنکھ کھل گئی، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ دعائیں. کبھی آپ کی آنکھ کھلے نا تو یہ دعا پڑھیں اس وقت. اور اس کا طریقہ کیا ہے، آپ کا جو بیڈ روم ہے نا اس کے اندر آپ کو ایک ایسا سا چارٹ بنا سکتے ہیں. مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ تھی بہت اچھی، تو انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے، ابھی تک لگا ہوا ہے. یعنی اس میں رات کے سونے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آمن الرسول جو سونے کے وقت کی دعا ہے، پھر اس میں یہ دعا خاص طور پہ اس نے لکھی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی یہ لکھا ہوا کہ اگر کبھی آنکھ کھلے اور یاد نہیں ہے تو آپ نائٹ لیمپ چلائیں تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ یاد بھی ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس وقت پڑھنے کا جو مزہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ہے، اور اتنا قرب محسوس ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ تہجد کے لیے جب اللہ کے نبی اٹھتے تو بستر پر بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ آل عمران کی آخری آیات، آیت 190 سے 200 تک پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لعلکم تفلحون تک. تو عمل کی بات کیا ہے کہ ہم اٹھتے ہی، یعنی جب بیٹھیں گے تو پھر ان کو آیتوں کو پڑھ سکتے ہیں. اگلی بات کہ تہجد کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی اللہ اکبر کے بعد دعا پڑھی آپ میرے ساتھ، بڑی خوبصورت ہے. اور یہ دعا حسن المسلم بک میں آپ کو تہجد کی دعا کے نام سے ملے گی. اللہم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. ملائیں گے تو پھر حق کن پڑھ سکتے ہیں آپ. ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي मा कद्दमतु
मा कद्दमतु
वमा अखरतु
वमा अखरतु
वमा असररतु
वमा असररतु
वमा आलंतु
वमा आलंतु
अंतल मुकद्दिमु
अंतल मुकद्दिमु
व अंतल मुअख्खिर
व अंतल मुअख्खिर
ला इलाहा
ला इलाहा
इल्ला
इल्ला
अंत। तर्जमा है, इलाही तेरे ही लिए सारी तारीफ है, ज़मीनो आसमान और जो कुछ इनमें है, तू ही सबको कायम रखने वाला है। तेरे ही लिए सारी तारीफ है, ज़मीनो आसमान और जो कुछ इनमें है, इन सब की बादशाही तेरे लिए है। तेरे ही लिए सब तारीफ है, तू ही रोशन करने वाला ज़मीनो आसमान को। तेरे ही लिए सारी तारीफ है, तू ही बादशाह है ज़मीनों आसमान का। तेरे ही लिए सारी तारीफ है, तू हक है और दुनिया आखरत के मुतल्लिक तेरा वादा हक है। आखरत में तेरी मुलाकात हक है, तेरा कलाम हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, तमाम अंबिया हक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है, क़यामत हक है। इलाही मैं तेरे सामने झुक गया, मैं सिर्फ़ तेरे साथ ईमान लाया, मैंने सिर्फ तुझी पर भरोसा किया, मैंने सिर्फ तेरी तरफ रुजू किया। सिर्फ तेरी ही मदद से दुश्मनों से झगड़ता हूँ, मैंने सिर्फ तुझे ही अपना हाकिम माना। सो तू मेरे अगले पिछले और जाहिर और पोशीदा, और जिन्हें तू मुझसे ज़्यादा जानता है, सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दे। तू ही आगे करने वाला और पीछे डालने वाला है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। एक एक लफ्ज़ के अंदर बंदगी और अबूदियत का दर्स है और अल्लाह ताला के सामने झुकने का। इस दुआ को भी आप अगर अपने बुक में से देख के तहज्जुद के वक्त पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको याद हो जाएगी। इवन नमाज के दौरान भी पढ़ सकते हैं देख के। अगली बात हमने जो सीखी वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ोकात सिर्फ एक आयत की तकरार में पूरी तहज्जुद की नमाज गुजार देते थे, क्योंकि एक मौके पे आपने एक आयत पढ़ी, इन तो अज़िब हम फ़ैन न हम इबादुक व इन तगफिर लहुम फ़ैन न का अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं और अगर तू इनको माफ़ कर दे तो तू यकीनन गालिब और हिकमत वाला है। तो लिहाजा अगर कभी आपका दिल किसी एक आयत पर ठुका है अपने दिल से, अल्लाह के नबी तो उम्मत की मोहब्बत में ये मांग रहे थे, तो आपको किसी को तड़प लगी हुई है, किसी का दिल रोया हुआ है, किसी को शौहर से कोई चोट पड़ी, बच्चों की चोट पड़ी, एक ही दुआ मांग रहे हैं, एक ही आयत पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। देखिए नफलों के मामले में इस्लाम का दायरा कार बहुत वसी है, फ़र्ज़ इबादत अपनी जगह, लेकिन अगर आपका अपने रब से ताल्लुक़ है वो जो भी करें, लेकिन किसी को बताने की नहीं, उसको आप कानून नहीं बना सकते, उसको मसला नहीं बना सकते। वैसे मुझे किसी की बात याद आ गई कि स्टूडेंट थी क्लास की, तो बच्ची की डिलीवरी का वक्त था, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आखिरी वक्त तक क्लास से जोड़े रखा। इत्तेफाक क्या हुआ कि उसी दिन हमने क्लास में वो आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला के बारे में कि फ़ैन नमा अरादा हो सूरह बकरा की है कि फ़ैन्ना मामरुहु इज़ा अरादा शैय्यन यकूल लहू कुन फ़यकून। ये तो सूरह यासीन की आयत है, इसी से मिलती जुलती थी, जिसमें अल्लाह ताला के साहिब कुन फ़यकून का हुक्म था। अब चूंकि वो ताज़ी ताज़ी तफसीर सुन के गई हुई थी कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है और वो तो सिर्फ कुन कहता है तो वो काम हो जाता है, उसके बाद वहाँ से वो हॉस्पिटल गई। अब बच्ची की कंडीशन बड़ी क्रिटिक थी और ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स भी डरा रहे थे व्हाटएवर, तो कहती हैं कि मैं बाहर बैठी हुई थी और मुसलसल मेरी ज़ुबान पे यही आई थी, सुन के गई थी ना, उनको उसका मतलब पता था। और कहती हैं कि फिर मुझे पता है कि मेरा ईमान है कि मेरी बस इस आयत की वजह से फिर नामुमकिन चीज़ अल्लाह ने मुमकिन करा दी ना। अब ये उनका फेल था। आप कहें क्यों, कोई दलील है, कोई सनद है? नहीं भाई, अल्लाह के बंदो जो आप सोचते हैं वो आपके जहन में रहते, यही तो ज़िंदा ताल्लुक है इस किताब से। हाँ, मसला क्या बिगड़े? अब वो एक किताब लिखें और उसमें लिखें इस आयत को आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ें, इतनी दफ़ा पढ़ें, इतना सवाब, ये गलत। आप अपने अमल को किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते। इस तरह हर बंदे का अमल है। आपको क्या पता है मुझे कुरान की कौन सी आयत पसंद है? आपको कौन सा पता है कि मैं अपने रब से बात करती हूँ तो मैं कौन सी आयत पढ़ती हूँ? इसी तरह मुझे आपका नहीं पता। अल्लाह के साथ ताल्लुक बड़ा प्यारा होना चाहिए, लेकिन उसको किसी के सामने एक कानून या एक मजबूरी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को कानून बनाते हैं और वो जाली हो तो आपकी पकड़ हो जाती है। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात तहज्जुद की नमाज में 4 रकतों में 7.25 सुपारे पढ़े। कैसे पढ़े थे? सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी, फिर बकरा पढ़ी, फिर रुकू किया इतना लंबा जितना क्याम था, फिर रुकू से सर उठाया इतना लंबा कौमा जितना के रुकू था, फिर सजदा किया कौमे की जितना लंबा, फिर दोनों सजदों के दरमियान दुआ मांगी सजदे की तरह, फिर सजदे के बाद जलसे में भी देर लगाई यानी दो रकतों के बाद बैठ गए, फिर इत्मीनान किया, फिर आपने चार रकतों में सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और मायदा पढ़ी। हम महीनों में पढ़ते हैं ये 7 बार। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी कि अल्लाह के नबी ने एक मौके पे नफली नमाज में सूरह बकरा पढ़ी। आपके साथ एक सहाबी थे, सोचा कि जब 100 आयतें हो जाएंगी तो अब रुकू में जाएंगे, पीछे अल्लाह गिन रहा होता है ना कब रुकू में जाएंगे इमाम साहब। अच्छा अब ये हदीस दोबारा सुनिए क्योंकि इसमें आपको एक बहुत अहम बात पता चलने वाली है। सूरह बकरा शुरू की, सहाबी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि आप 100 रकतें पढ़ के रुकू में जाएंगे लेकिन आप पढ़ते ही चले गए। मैंने सोचा सूरह बकरा को 2 रकतों में तकसीम करेंगे लेकिन यनियादी सूरत पढ़ के आप रुकू में जाएंगे, लेकिन आपने पूरी सूरह बकरा पढ़ ली। आप सोचा होगा आप जाएंगे, कहा नहीं, आपने सूरह निसा शुरू कर दी, फिर उसे ख़त्म किया, फिर क्या पढ़ा, सूरह आले इमरान पढ़ी, वो ख़त्म की, और इसी तरह पढ़ते जा रहे थे। जहाँ सुभान अल्लाह का हुक्म होता तो सुभान अल्लाह कहते, कुछ मांगने का जिक्र होता तो सवाल करते, पनाह मांगने का जिक्र होता तो औज़ु बिल्लाह कहते, सूरह आले इमरान ख़त्म करके आपने रुकू किया। इसमें जो बाकी बातें पता चली सो चली, इसमें एक अहम बात क्या पता चली कि तरतीब लाजिम नहीं है। सूरह बकरा के आले इमरान आती है ना, नहीं आपने सूरह निसा पढ़ी फिर सूरह आले इमरान पढ़ी, तो बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि तरतीब लाजमी है तो उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत दलील है। अच्छा ये तो आपका अपना अमल था ना, एक अगला मसला लिखिए इससे जो हमें मालूम हुआ कि सारी रात नफिल पढ़ना और हमेशा दिन में रोज़ा रखना इसकी इजाज़त नहीं है, कुछ हिस्सा क्याम कुछ हिस्सा नींद। अगली बात सीखी कि 3 दिन से कम में कुरान पाक ख़त्म करना पसंद नहीं फरमाते थे आप, 1 माह में कहा ना करो, इससे कम कम करते करते कम अज़ कम फिर ये है 7 दिन में और 3 दिन में फिर आखिर इजाज़त दी आपने, और आपने कहा कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा उसने हक अदा नहीं किया, उसने यानी हक नहीं दिया। अब बताइए जो लोग एक ही मौके पे कई की सिपारे पढ़ के कई की कुरान ख़त्म करते हैं तो हक तो अदा नहीं होता ना। एक और बात बड़ी खूबसूरत है और इसको हम अपने अमल के लिए ज़रूर नोट करेंगे, वो क्या कि जो रात के नवाफिल में 200 आयात की तिलावत करता है वो इताअत गुजार मुखलिस लोगों में शामिल होता है। 200 आयतें चाहे पिछली सूरतें याद कर लें, आखिरी आयतें तो बहुत छोटी छोटी हैं ना, 2-3 सूरतों में इंशाल्लाह हो जाएंगी। फिर अगली बात सीखी कि अल्लाह के नबी सारी रात नफिल नहीं पढ़ते थे। फिर अगली बात हमने सीखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दुआओं के नाते से, और वो क्या कि एक मौके पे आप सारी रात बेदार हुए नफिल पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हुई, फिर जब आपने नमाज से सलाम फेरा तो सहाबी हबाब बिन अरत कहते हैं अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिस तरह आपने नवाफिल पढ़े इससे पहले मैंने कभी आपको इस तरह नमाज अदा करते नहीं देखा, यानी आपकी आदत नहीं थी इससे अनयूजुअल हुआ। आपने फरमाया तुमने दुरुस्त कहा, नमाज ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह के साथ शौक बढ़ जाता है और इसके अजाब से पनाह मांगी जाती है, चुनाचे मैंने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए जिनमें से 2 कबूल हुए, एक सवाल कि मेरी उम्मत को पिछली उम्मतों की तरह तबाह बर्बाद न करे, इसको अल्लाह ने कबूल फरमाया, दूसरा सवाल मेरी सारी उम्मत पर बयक वक्त दुश्मनों को गलबा हासिल ना हो, ये भी कबूल कर लिया गया, फिर मैंने सवाल किया कि उम्मत मोहम्मदिया में इख्तलाफ रूनमा ना हो लेकिन इसे कबूल नहीं किया गया, इम्तिहान था ना उम्मत का। फिर अगली बात हमने देखी कि नफिल नमाजों में कभी आप सिर्री आवाज़ यानी छुपा के आहिस्ता और कभी बुलंद यानी जहरी आवाज़ से किरत फरमाते थे, और आपकी नमाज की किरत की आवाज़ घर में दूसरों को भी थोड़ी सुनाई देती थी। अगली बात हमने सीखी कि नफिल नमाजों में ना तो बहुत चीख के और ना बहुत आहिस्ता बल्कि दरमियानी आवाज़ से किरत करनी चाहिए, और दिलचस्प रिवायतें आप पढ़ लीजिएगा बाद में। अगली बात कि रमज़ान होता या गैर रमज़ान अल्लाह के नबी 11 रकत से ज़ायद नमाज नहीं पढ़ते थे रात को, हाँ उनकी खूबी और उनकी तूल इसका ना पूछो, यानी बहुत लंबी लंबी रकतें करते थे। हमारे असल में गिनने का रिवाज है, यानी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कॉन्शियस है, कितने नफिल पढ़े कितने सपारे पढ़े उसमें से लिया कितना ये कम बात होती है, लेकिन उन्हीं को आप लंबा कर लेते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी का क़ियामुल लैल का तरीका हमने देखा, वितर पढ़ने का तरीका देखा, हर 2 रकतों पर सलाम फेरते और 1 रकत आखिर में वितर करते, और इसी तरह हमने 11 तक पढ़े। एक और बात हमने सीखी कि वितर रात के आखिरी हिस्से में भी पढ़ा जा सकता है, और ये भी सीखा कि जब रात को कोई नफिल पढ़ना शुरू करे तो पहले दो हल्की रकअतें अदा करे, और यानी आखिर में फिर उससे वितर बना के तो नमाज पूरी की जा सकती है। फिर अगली बात हमने सीखी कि एक सलाम में भी तीन वितर हो सकते हैं और दो सलाम के साथ भी तीन वितर हो सकते हैं, और दोनों ही का तरीका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके। अगली बात कि आप कभी 7, 9 और 11 तक वितर पढ़ते थे, ये रकतें। इसी तरह क्यामुल लैल 7 रकत से 13 रकत तक भी आपने अदा की, जिसमें 5, 3 और 1 वितर होता था, बाकी नफिल जो होते थे। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि वितर की तीसरी रकत में तशहुद के लिए नहीं बैठना, बल्कि आखिरी रकत में ही बैठना। यानी आप 5 भी इकट्ठी पढ़ रहे हैं ना, तो बस बीच में बैठेंगे नहीं, खड़े होते जाएंगे और आखिर में फिर अत्तहियात पढ़ के उठेंगे। अगली बात हमने वितर के नाते से सीखी कि अल्लाह के नबी पहली रकत में सब्बी हिस्मा रब्बी कल आला, और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। फिर अगली बड़ी अहम बात है कि एक रात में 2 दफ़ा वितर नहीं पढ़ने चाहिए। बस लोग रात को पढ़ के सो जाते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि हमारी सुबह आँख नहीं खुलेगी। फिर सुबह उठ के अब क्या करें, नफिल पढ़िए जितने मर्जी पढ़े। देखिए वितर का ताल्लुक ना तो ईशा की नमाज से है ना फजर से, ये एक अलग इबादत है। पहले कर चुके कोई बात नहीं, बाद में नफिल पढ़ लें, पहले छोड़ देते हैं कि आखिर में पढ़ेंगे, कोई हर्ज नहीं, दोनों तरीके ठीक है। अगली बात, नमाज वितर में मगरिब की नमाज की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, यानी दूसरी रकत में बैठने वाली कैफियत। अगली बात बड़ी खूबसूरत है कि अगर कोई आखिरी रात में ना उठ सके तो शुरू में पढ़ ले, और जो आखिर में उठे तो वो पढ़े आखिर में, और ये अफजल है। आपने पूरी रात कभी शुरू, कभी आखिर, कभी बीच में, हर वक्त में पढ़ी। फिर अगली बात हमने इसमें जो सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी रात में कुरान नहीं पढ़ा, और पूरी रात नमाज नहीं पढ़ी, और रमज़ान के अलावा कभी पूरा महीना रोज़े से नहीं रहे। फिर इसमें एक तवील रिवायत, आप इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा, कि जिसमें अल्लाह के नबी के वितर पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके को बताया गया। अगली चीज़ हमने सीखी कि वितर पढ़ने के बाद सलाम फेर कर अल्लाह के नबी 3 बार ये कहते थे, क्या? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, पढ़िए सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। अगली बात हमने सीखी कि जो वितर ना पढ़ सके या पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए तब वितर पढ़ ले। अगली बात सीखी कि अगर कोई रात का वजीफा या मामूल की चीज़ छूट जाए तो नमाज़े फजर से जोहर के बीच के वक्त में अदा कर ले, तो उसको रात ही के वक्त में अदा करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, आप नहीं पढ़ सके तहज्जुद सुबह उठ के पढ़ लें, कोई बात नहीं, इसी तरह आदत हो जाएगी इंशाल्लाह वक्त पे पढ़ने की। अगली बात हमने सीखी कि जो नफिल इबादत करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगली चीज़ दुआए कुनूत, इसको देख लेते हैं, ये मसला थोड़ा सा देखने के काबिल है। और वो क्या कि अल्लाह के नबी 3 वितर पढ़ते और दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। अगली रिवायत क्या है कि दुआए कुनूत वितर रुकू से पहले पढ़ते थे, बाज़ लोग रुकू के बाद पढ़ते हैं, तो ये लिखते हैं कि वितर में रुकू के बाद कुनूत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, और जो रिवायात सही हैं इनमें सराहत नहीं, यानी वजाहत नहीं, कि अल्लाह के नबी का रुकू के बाद वाला कुनूत कुनूत वितर था या नासला। कुनूत नासला क्या होता है कि कभी किसी क्लेमिटी या कोई डिजास्टर, कोई मुसलमानों पे कोई आफत आ जाती है तो उस मौके पे पढ़ा जाता है। तो लिहाजा सही तरीका ये है कि वितर में कुनूत रुकू से कबल किया जाए। ये भी मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। अमूमन लोग दुआए कुनूत जो है वो रुकू के बाद पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ने की कोशिश करें। हमारे सामने दलील है, फिर जब दलील आ गई तो मान लिया, और हमारा मज़हब ही दलील का, अपने लिए हमेशा एक जहन में रखिए, जिसकी दलील मिल गई मान लूँगी, क्योंकि हमारा यकीन और हम इसी एतमाद पे इस बुक को पढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें सही रिवायात है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पीछे से हम कर रहे होते हैं, अगर उसको हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, और यानी करते थे आज छोड़ देंगे, तो हिजरत का भी तो सवाब मिलेगा ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। बाद जब आप एक अमल को सही या अच्छा अमल समझ के कर रहे होते हैं, बाद में आपको उसके मुखालिफ आता है तो बदल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। असल बात तो ये कि हमने जो अपने जिसको कहना चाहिए रीसेंट, अपने फौरी वक्त के मुताबिक जिस चीज़ को सही समझा उसको कर लिया। कल हो सकता है आपके सामने कोई और रिवायत आ जाए, उसकी सनद स्ट्रांग होगी तो उसको हम मान लेंगे इंशाल्लाह तआला। जो दुआए कनूत है ना, वो रुकू से उठने के बाद पढ़नी है, पढ़ते हैं ना लोग अमूमन, रुकू में जाने से पहले पढ़नी चाहिए, बस ये सीखे इसमें। दुआए कनूत पढ़ते हैं ना, लमा दिनी फी मन हदईत, या जो दूसरी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से रुकू में जाने से पहले पढ़ेंगे, कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं। फिर अगली बात हमने सीखी कि नफिल नमाज उस वक्त तक पढ़नी चाहिए जब तक दिल की रग़बत हो, थक जाएं तो आराम करना चाहिए। आपको पता अल्लाह के नबी की बीवी ज़ैनब जो थी, उन्होंने अपनी चुटिया को रस्सी के साथ बांधा हुआ था, तो आपने कहा ये क्या, कहा अल्लाह के नबी पढ़ते पढ़ते रात को अगर ऊँग आ जाएगी तो बाल खींचेंगे तो उड़ जाऊंगी। तो फिर उस पर आपने कहा था कि खोल दो और अल्लाह ताला बंदे को सवाब देते हुए नहीं थकता, यानी जितना सही तरह कर सको करो और नींद आ जाए तो सो जाओ, जितनी ताकत हो कि अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता तुम अमल करने से थक जाओगे। फिर दुआए कुनूत के अल्फाज हैं, कह लेते हैं एक दफ़ा। जो वितर की दुआ नबी सल्लम से हमें मिलती है वो क्या है, अल्लाहुम्मा दीनी
अल्लाहुम्मा
फी मन हदीता
फी मन हदीता
व आफिनी
व आफिनी
फी मन आफ़ईता
फी मन आफ़ईता
व तवल्लनी
व तवल्लनी
फी मन तवल्लैता
फी मन तवल्लैता
व बारिक ली
व बारिक ली
फी मा आतैता
फी मा आफ़ईता
व क़िनी
वक़िनी
शर्र मा क़दैता इन्नका
इन्नका
तक़दी
तक़दीर
वला युक़दा अलैक
वला युक़दा अलैक
व इन्नहु
व इन्नहु
ला यज़िल्लु
ला यज़िल्लु
मम वालैत
मम वालैत
वला यइज़्ज़ु
वला यइज़्ज़ु
मन आदैत
मन आदैत
तबारकता
तबारकता
रब्बना
रब्बना
व तआलैत। एक एक लफ्ज़ खूबसूरत है। ए अल्लाह मुझे हिदायत देकर इन लोगों के गिरोह में शामिल फरमा जिन्हें तूने रुश्दो हिदायत से नवाजा है, और मुझे आफियत देकर इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने आफियत बख्शी है, और जिन लोगों को तूने अपना दोस्त बनाया है इनमें मुझे भी शामिल करके अपना दोस्त बना ले, और जो कुछ तूने मुझे अता फरमाया इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, और जिस शर और बुराई का तूने फैसला फरमाया है इससे मुझे महफूज रख और बचा ले। यकीनन तू ही फैसला सादिर फरमाता है, तेरे खिलाफ फैसला सादिर नहीं किया जा सकता, और जिसका तू वली बना वो कभी जलीलो ख्वार और रुस्वा नहीं हो सकता, और वो शख्स इज्जत नहीं पा सकता जिसे तू दुश्मन कहे। हमारे परवरदिगार आका तू बड़ा ही बरकत वाला और बुलंदो वाला है। अब ये तो दुआ थी ना, तरीका देखिए कि दुआए कनूते वितर में हाथ उठाने के बारे में कोई मरफू रिवायत नहीं है, अलबत्त मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में बास आसार मिलते हैं, इसलिए हाथ उठाकर या हाथ उठाए बगैर दोनों तरीकों से कनूते वितर की दुआ पढ़ना दुरुस्त है। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। फिर रब्बना व तआलैक के बाद नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक के लफ्ज़ जो ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, तो इसको पढ़ने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप आगे दलील पढ़ रहे हैं कि छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कहा, तो ये सुनकर इब्ने उमर कहने लगे कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कह सकता हूँ, मगर रसूलिल्लाह ने इस मौके पर हमें ये तालीम नहीं दी, बल्कि ये फरमाया कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल पढ़ा जाए। तो इससे हमें सहाबा कराम की इख्तियात का पता चलता है कि अपनी मर्जी से किसी चीज़ में इजाफा नहीं करते थे, तो दुआओं में ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कनूत नाजला। नाजला नाजला से है, यानी जब मुसलमानों पे कोई मुश्किल आती है तो उस वक्त में एक दुआ अल्लाह के नबी पढ़ते थे, आप भी पढ़ें, और दुनिया में जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है आप तर्जमे से देखेंगे कि कितनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फिर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनाती वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती व अल्लिफ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुविक
अला अदुविक
وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں، مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کی باہمی اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما. الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے اور تیرے دشمنوں سے لڑتے ہیں. الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا. تو لہٰذا اگر کسی دشمن پہ بد دعا کرتے، جیسے ایک موقع پہ ایک قبیلے کے لوگ تھے، دھوکے سے انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو بلوایا کہ ان کو بھیجیں تاکہ ہمیں دین سکھائیں. آپ نے 70 حافظ قرآن یعنی جو ایک عالم تھے ان کو بھیجا، لیکن انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا. اب اتنا بڑا نقصان، جب پہلے ہی تھوڑے تھے اور اس میں بھی 70 اور علم والے چلے گئے، تو اللہ کے نبی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ پھر آپ کئی دن تک، تقریباً ایک مہینہ تک اس قوم کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں سی آرام سے جب ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی مدد بلوائی جا سکتی ہے ان کے لیے. طریقہ کیا آتا تھا؟ کوئی بھی نماز جو فرض نمازیں ہوتی تھی، اس کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ہو ربنا ولک الحمد کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے. آج بھی مسجدوں میں نے ایسا دیکھا ہے، خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد جو آخری رکعت ہوتی ہے نا، دوسری رکعت کا جو رکوع ہے، اس سے اٹھ کے یہ دعا مانگی جاتی ہے. اور آپ نے 500 نمازوں میں ایک مہینے تک یہ دعا پڑھی تھی اور صحابہ کرام آمین کہتے تھے. بہرحال قیام رمضان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کا قیام انسان کے اجر کا سبب ہے. اگلی چیز اس حصے سے ہم نے سیکھی کہ 3 رات تک آپ نے قیام کیا اور فرض نہیں کیا ہر رات کو جاگنا. حضرت عمر نے باجماعت قیام رمضان دوبارہ شروع کرایا، مگر یہ بھی فرمایا کہ رات کا آخری حصہ جس میں لوگ سو جاتے ہیں وہ پہلے حصے سے بہتر ہے. پھر اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے. اور حیرت ہوتی مجھے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں رمضان آیا ہوا آج کل ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تہجد تراویح کا دوسرا نام ہے، رمضان میں نہیں پڑھی. آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا کریں، سحری میں اٹھ رہے ہیں قرآن پڑھ لیں، ذکر اذکار کریں. اب آپ کو اتنے ذکر تو پتہ چل گئے رات کے پڑھنے کے، دعائیں مانگ لیں، استخارے کے پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، توبہ کے پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے نہیں پڑھیں گے. پھر اگلی چیز کہ اللہ کے نبی کی جو رات کا قیام تھا وہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہوتا تھا. پھر اگلی چیز کہ حضرت عمر نے بھی مدینہ کے قاریوں کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تھا. اگلی بات سیکھی کہ حضرت عمر، حضرت علی، ابی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین سے 20 رکعت والی قیام اللیل کی تمام روایات سندن ضعیف ہیں. اور اگلی اور آخری بات جو اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی، پھر فجر کے لیے کھڑے ہوئے، اور سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں داخل ہونے کا وقت اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی قرآن کریم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا تھا، یعنی 50 to 60 آیتیں تھیں. تو یہاں پہ الحمدللہ یہ باب پورا ہوا. آپ دیکھیں کتنی زیادہ مسائل ہمیں اس میں پتہ چلے نا، اور نوافل میں ہی عموماً ہم سے کمی بیشی ہوتی ہے. اگلے چیپٹر کو دیکھیں گے نماز قصر. اس میں سے ہم نے کیا سیکھا کہ سفر میں جب کوئی جائے تو نماز کو کم کیا جا سکتا ہے. ظہر کی 2 رکعتیں، فجر اسی طرح رہے گی جیسے ہوتی ہے، عصر بھی 2 رکعت. دوسری چیز، سفر کا تعلق جو ہے وہ شہر کی حد کے ختم ہونے سے ہے. کوئی شہر جلدی ختم ہوتا ہے، کوئی دیر سے ختم ہو جاتا ہے. پھر اگلی بات ہے کہ سفر की हालत में खौफ हो या ना हो, दोनों में कसर होगी। फिर अगली बात यह है कि कसर के लिए कम से कम जो मुद्दत है वो 3 दिन की है। शक की हालत में 6 माह तक भी, उससे ज़्यादा भी पढ़ी जा सकती है। हत्ता के 10 साल कोई कहीं रहे और उसको शक है कि मैं किसी वक्त भी चला जाऊंगा तो भी कसर है, यानी एक मिसाल दी गई। अब ये सारी रिवायतें कहीं 19 दिन का मिलता है, कहीं 15 का मिलता है, कहीं 3 का, और अमूमन लोग इस पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ मिलती है वो 3 दिन की मिलती है, क्योंकि देखें जो 15 दिन कहते हैं उसमें भी 3 तो डन है ना, जो 19 कहते हैं उसमें भी 3 डन है। तो आप सारी रिवायतों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको खुद ही जहन में आ जाएगा कि इंसान 3 दिन तक अगर उसकी नियत करके जाता है, घर से निकले आपको तक किसी एक शहर में आप 3 दिन या उससे ज़्यादा रहेंगे तो फिर आप कसर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आप गए और आप गए गए थे 2 दिन के लिए, आज जाते हैं आज जाते हैं, टिकट नहीं मिल रही टिकट नहीं मिल रही, वीज़े का मसला है, कुछ होते 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 पूरा महीना भी लग गया तो इंशाल्लाह कसर पढ़ेंगे। तो कसर का ताल्लुक बेसिकली अनसर्टनिटी से है, गैर यकीनी सूरत हाल। जी देखिए, किसी एक मुकाम पे 3 दिन है। मिसाल देती हूँ, आप यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं 1 महीने के लिए गए, एक सूरत है कि आप यहाँ से सीधा लाहौर गए और वहीं से आ गए, तो फिर तो आपकी पहले ही दिन से पूरी नमाज होगी। लेकिन आप चूँकि थोड़े दिन के लिए गए, आप सब रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, 3 दिन आप लाहौर रहे, फिर आप वहाँ से उठे तो 3 दिन आप फैसलाबाद चले गए, 2 दिन बाद आप वहाँ से सरगोधा चले गए, वहाँ से उठे तो मुल्तान चले गए। तो जहाँ भी आप 3 से कम दिन रहे वहाँ आपकी नमाज कसर है। अब पूरा महीना आप सफ़र में तो आप पूरी पढ़ते रहेंगे ना। ये जो अल्लाह के नबी के 19 दिन के पढ़ने की रिवायत है वो यही है कि आप मुख्तलिफ जगह जाते रहते ना, तो आज भी यही हुक्म है कि जहाँ भी हम रहेंगे कम पढ़ेंगे। फिर इसी तरह मीना में भी कसर नमाज पढ़ाई थी, आज के दौरान जो मीना के दिन है उसमें भी कसर पढ़ेंगे। और दूसरी बात हमने सीखी कि कसर नमाज अल्लाह का तोहफ़ा है, इसको कबूल करना चाहिए। बस लोग कहते हैं कि आजकल चूँकि इतने पुरसकून सफ़र हैं क्या मुश्किल है, नहीं लॉजिक नहीं है, जब हुक्म है तो उसको आज कसर पढ़ना ज़्यादा अजर का जरिया बनेगा ना कि पूरी पढ़ना। फिर सफ़र में कोई नमाज पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, 1 अजान और 2 इकामत से। जोहर पढ़ रहे हैं तो बस एक दफ़ा अजान दी जाएगी और जोहर और असर दोनों के लिए अलग से इकामत कही जाएगी। अगली चीज़ ये कि सफ़र में 2 नमाजें भी जमा की जा सकती हैं, ये बहुत अहम है, इसको समझ लेते हैं। एक जमा क्या है कि जोहर के वक्त पे ही असर पढ़ लेना और मगरिब के वक्त पे इशा पढ़ लेना, इसको कहते हैं जमा तकदीम, कदम कहते हैं आगे को, यानी वक्त से पहले पढ़ लेना। दूसरी ये कि आप सफ़र ऐसा था, आप अभी और चल रहे थे, आपने कहा एक ही दफ़ा रुकेंगे वट एवर, जोहर का कुछ वक्त गुजर गया, असर के करीब पहुँचे, जोहर पहले पढ़ी फिर असर पढ़ी, इसी तरह मगरिब पे नहीं रुके, चलते गए चलते गए, इशा का वक्त आ गया, पहले मगरिब पढ़ी फिर इशा पढ़ी, इसको कहते हैं जमाए ताखीर, वक्त से पहले पढ़ना या वक्त के बाद पढ़ना। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो जायज़ हैं, इस्लाम में इसकी रुख्सत दी गई और इससे बहुत सारी सहूलतें मिल गई ना। आप कहीं नहीं पढ़ पा रहे थे तो वेट कर लें, और कहीं आप पढ़ सके तो अच्छा अगली भी पढ़ लें, जहाज़ कहीं रुका स्टॉप ओवर हुआ आप उस जगह पर दोनों अगली नमाजें भी पढ़ लें। लेकिन आम हालात में घर में रहते हुए इसकी इजाज़त नहीं। बास ख़वातीन कहती हैं हमने बाज़ार जाना है तो हम जोहर के साथ असर पढ़ लें, तो वो फिर खेल ही होगा। जी आप, इनका सवाल ये है कि आजकल चूँकि इशा की नमाज़ यहाँ लेट होती है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मगरिब के साथ इशा पढ़ लें, ये सवाल मुझे कई शहरों में किया गया पीछे भी, तो इसकी इजाज़त नहीं है। यही तो अल्लाह सिखाता है, इसी का नाम इताअत है। हम वैसे भी तो जागते हैं ना, आप मामूलात कर लें ऐसे कि आप कुछ ऐसा वक्त बीच में आराम कर चुके हैं और फिर बीच में पढ़ें, लेकिन पहले नहीं पढ़ सकते। और आजकल यहाँ मैंने देखे 11:15 पे हो जाता है वक्त, मगरिब जो है आपके पास तकरीबन 10 समथिंग पे होती है। किस बच्चों को तो और सिखाना है ना, नहीं पढ़ सकते। मैंने कल परसों फिर इस मसले की रिसर्च की तो इस तरह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि सफ़र में सुन्नतें माफ़ हैं, ठीक है, सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, दैट्स इट। वितर नहीं छोड़ेंगे सफ़र में और फजर की सुन्नतें नहीं छोड़ेंगे। फिर कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जिसमें हजर यानी घर के आलम में भी दो नमाजें जमा की जा सकती हैं। मसलन बारिश, तेज़ बारिश है कि घर से निकलना मुश्किल है, दोबारा तो मस्जिद में फिर दोनों नमाजें इकट्ठी पढ़ाई जा सकती हैं, इसकी भी रुख्सत मौजूद है। सफ़र किसको कहते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई शहर छोटा है बड़ा है, जैसे मिसाल अब यहाँ के हिसाब से मैं आपको मिसाल दूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त स्टोवनर में, यहाँ से आप जाते हैं ग्रोनलैंड, फिर उधर से जाते हैं आप, अलग अलग जगह है ना, तो क्या हुक्म होगा? इसके लिए बहुत सिंपल सा असूल याद रख लें कि जिस जगह एक इलाके से जाते हुए दूसरे इलाके तक बीच में थोड़ा सा वीराना आए, खेतों से गुजर रहे हैं, जंगल आ गया या सहरा आ गया, एक इलाके से दूसरे तक गुजरते गुजरते बीच में अगर वीराना आ जाए तो फिर वो एक अलग शहर कहलाएगा। वरना आपको पता है दुनिया में ऐसे रहते हैं, बल्कि हम जहाँ रहते हैं सड़क एक तरफ एक नाम है तो दूसरी तरफ दूसरा नाम है। अब जैसे मैरीलैंड एक स्टेट है, अगर आप अमेरिका में देखें तो उसमें हर 15 मिनट आधे आधे घंटे पर डिफरेंट, बिल्कुल शहर ही डिफरेंट है, कहीं आपको वाशिंगटन डीसी मिल जाता है तो कहीं आपको जर्मन टाउन मिल जाता है, तो फिर पूरी पड़ी जाएगी। ठीक है, कसर का ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि जिसमें आप फील करते हैं कि मैं बाहर हूँ। आपका मूल शहर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ह्यूस्टन जैसा शहर है, हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो हमें 1.25 घंटा तकरीबन लगता है, तो हम वहाँ जाके कसर नहीं पड़ेंगे ना। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं, एक शहर छोटा सा ख़त्म हुआ, आप ट्रैवलिंग में देखते हैं कोई बीच में छोटा सा शहर आता है, 2-4 मिनट वहाँ आबादी रहती है फिर ख़त्म हो गया, तो फिर उस सूरत में इंशाल्लाह ताला हम कसर कर सकते हैं। बस लोग एक और मुगालता देते हैं, देखें आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोचिज़ के सफ़र हैं, गाड़ियों के, तो जो भी हो ये अल्लाह का तोहफा है। फिर बात कहते हैं ले आजकल तो मेहमान जो है वो ज़्यादा फारिग होते हैं, घर वाला ज़्यादा बिजी होता है, तो घर वाला कसर पढ़ ले, तो फिर जो मर्ज़ी कर लें कोई, लेकिन हुक्म यही है ना। फिर आप देखिए एक और चीज़, सफ़र शुरू करने से पहले ही देख लें आपकी कोई नमाज़ तो नहीं जाने वाली। हमारे मुसलमानों की हालत कब बदलेगी, जब हमारे औकात नमाज़ों के साथ चलेंगे। शादियों पे लिखें बाद दस निकाह फुला, वलीमा कब हो रहा है, मगरिब के बाद, रुख्सती कब है, ईशा के बाद, अच्छा भाई कोई यानी दावत रखी है फजर से बाद, जहर, इस तरह के मामूलात बनाएं। हम कुछ भी करते हैं तो हर काम करने के घड़ी में देख लें कि सफ़र के लिए निकल रहे हैं तो हम नमाज कैसे रुकेंगे। तो बाद लोग ये सवाल करते हैं हम क्या करें। एक और याद आ गया मसला, माशाल्लाह मैन मेड जो मसला हमारी शरीयत में कि जी मैके में जाके कसर नहीं होती, बाज़ कहते हैं जहाँ अपना घर हो वहाँ नहीं होती, ये सब बातें हैं। फिर एक सवाल है, कुछ लोगों की जॉब इधर होती है रहते कहीं और है, अब वो क्या करें, वो हफ्ते में 3 दिन इधर है 2 दिन उधर है, तो वो दोनों उनका घर है। जहाँ आपका घर है ना वो सफ़र नहीं है। सफ़र क्या है कि जहाँ जाके आपको वो जगह अजनबी लगे, तो इंशाल्लाह इस सूरत में नहीं। मतलब जैसे कुछ लोग शिप्स पे काम करते हैं, मुसलसल ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो वो शिप उनका घर है, तो वो पे पूरी पड़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे।